सूरत अल इंशराह पिछले सबक का ही ये कंटिन्यूशन है। तरतीब के अतबार से 94 नंबर की सूरत है। एक रुकू है, 8 आयात, 27 यानी 27 कलेमात और 103 हरूफ हैं, 103। मक्की सूरत है और सूरत दोहा के बिल्कुल साथ वाले दौर में नाजिल हुई। सूरत दोहा से आखिर कुरान पाक तक जो 22 सूरतें हैं उनमें से अक्सर सूरतें जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हैं। और तरतीब देख देख के हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने हर सूरत को ऐसी जगह पे रखा जहां हकीकत में उसको होना चाहिए। फिरोई भी सूरतें लगती हैं, सिर्फ चंद एक सूरतें ऐसी आएंगी कि जिसमें कुरान की बात आएगी, उसकी शान या क़यामत का, जन्नत का, जहन्नम का तस्करा होगा। ज़्यादा बात जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है। इससे पता चलता है कि कुरान पाक की सूरतों की जो तरतीब है ना, ये तौफीकी है। तौफीकी किसको कहते हैं? जो अल्लाह की तरफ से। एक होती है जो बाद में उलमाए कराम ने, मुफस्सरीन ने या सहाबा कराम, ताबईन, बाद के लोगों ने जमा की। लेकिन हमारा ईमान है कि कुरान पाक की जो आयत, जो सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ रखने को कहा वो वही हुई। और अब हम इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इसकी हिकमतें क्या हैं। सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीन बहुत बड़े बड़े इनामात का तज़किरा है कि अल्लाह की ज़ात ने किस तरीके से उनका शरह सदर किया, वज़ह विज़र किया, बोझ का हटाना, और तीसरा रफ़ा ज़िक्र, आपके ज़िक्र को बुलंद किया गया। और इस वक्त तो हम इन सूरतों को पढ़ते हुए बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप महसूस करें कि जिस दौर में ये सूरतें नाजिल हो रही थी वहाँ अल्लाह के नबी सल्लम के लिए इतनी खुशादगी और इतनी आसानी की बातें जो की जा रही थी, तो यकीनन ये उस दौर के लोगों के लिए नाकाबिले यकीन होती अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ला चुके होते और अगर उनको इस बात का यकीन ना हो चुका होता कि वाकई आज की मुश्किलात कल जो हैं वो ठीक होने वाली हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के इब्तदाई दिनों में जो बोझ पड़ रहा था उसका तज़किरा इस सूरत में है। वो कुरान जिसके लिए सूरत अल हशर में कहा गया कि वलौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराईतहु ख़ाशियन मुतसद्दियन मिन ख़शयतिल्लाह, तो जब वो कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पे नाज़िल हुआ। इसकी दलील भी कुरान में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये कुरान आपके दिल पर नाजिल किया, तो आप महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी के लिए ये चीज़ कैसी बोझल थी। एक तरफ वही का बार, दूसरी तरफ माशरे के अंदर बनी हुई सांख बिगड़ने लगी, मक्का की सारी फिजा सुलगने लगी, लोगों के तौर तरीके बदलने लगे, हर चेहरे पर नफरत और हर आँख में इनाद के शोले नाचने लगे। और ऐसे नामुवाफिक हालात में कि एक तरफ तो दिल पे बोझ है, ये बिल्कुल इस तरह ले लें सिर्फ बात समझने के लिए कि एक तो कुरान की तरफ जब इंसान नया नया आता है तो खुद हर चीज़ मुश्किल लग रही होती है, आदत नहीं होती बैठने की, बैठना मुश्किल लगता है, तजवीद से पढ़ना मुश्किल, लफ्जी तर्जमा मुहाल है, ये सब कुछ मुश्किल लगता है। और ऊपर से अगर घर वालों में कुछ बातें भी होने लग जाएँ, कोई मुखालफत हो, बच्चे और घर को साथ ले कर नहीं चल पा रहे, तो ऐसे हालात में जब एक इंसान अल्लाह की तरफ आए और नया नया आए और फिर उसके लिए उसका माहौल जो है वो बिल्कुल अजनबी बने, तो ऐसे वक्त में जो तसल्लियाँ चाहिए थी वो हमें इस सूरत में मिलती हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से इस सूरत को पढ़ने के साथ साथ हम में से हर एक के लिए इसमें हमारी अपनी ज़ात के लिए भी कुछ तसल्लियाँ हैं और कुछ पेशनगोइयाँ हैं, किस तरीके से कहाँ क्या होने वाला। सूरत को एक दफ़ा पढ़ के खुलासा फिर कुछ बातें करेंगे, क्योंकि ये सूरतें ऐसी हैं किसमें एक एक आयत की बजाय पूरी सूरत को जब हम साथ लेते हैं तो बात जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया। सवाल है बज़ाहिर लेकिन पूछना मतलूब नहीं है, बल्कि यकीन दिलाना मतलूब है, एक चीज़ की अहमियत को वाज़ह करना मुराद है। यहाँ लफ्ज़ आया है नशरह, शरह से है, शरह कहते हैं गोश्त काटने और इसको टुकड़े टुकड़े करना, इसी से लफ्ज़ शरह सदर भी है। मतलब क्या है कि नूरे इलाही से सीना कुशादा हुआ, अल्लाह का कलाम दिल में गया, दिल के 100 टुकड़े हो गए। और जब दिल टूटता है तो अल्लाह का कलाम जज्ब होता है। इमेजिन करें कि मट्टी है, सख्त बंजर, इतने में बारिश हुई। बारिश के साथ मट्टी थोड़ी सी नरम हुई, उसमें दरारें पड़ी तो बारिश का सारा पानी अंदर चला गया। दिल भी सख्त हो जाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए दिलों के ऊपर दुनिया की मोहब्बत, उसकी कालस और न जाने दिलों में बुग़्ज़, कीने, हसद, क्या क्या जज्बात होते हैं। इतने में उस दिल के ऊपर जब कुरान की वही की बारिश होती है तो एकदम शरह सदर होता है। क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन कहा गया, क्या हमने आपकी खातिर, यहाँ नशरख के वक्त लका बहुत अहम है, ये नहीं कहा कि अलम नशरख सदरक, बात बिल्कुल ठीक थी, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया। यहाँ लका कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी हकीकत बताई गई, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा इनाम, वदअना अनका विज्रक, और हमने उतार दिया आपसे आपका बोझ, आपके कंधों पे जो बोझ था, जो बोझ था वो क्या था उसको हम देखेंगे। लेकिन विजर कहते हैं बोझ को। आज के दौर में लफ्ज वजीर जो बोला जाता है वो भी इसी से है। वजीर कौन होता है? बादशाह का बोझ बांटने वाला। असल काम वजीर ही करते हैं, बादशाह सिर्फ हुक्म देता है या उसकी पीछे से कमांड होती है, बाकी काम जो है वो उसके लोग कर रहे होते हैं। तो विजर से बोझ, इस लफ्ज को हम पीछे बहुत दफा पढ़ चुके के ला तजीरु वाजिरा तुम विजरा उखरा, क्यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो अल्लाह ताला नबी सल्लम को दूसरा इनाम याद दिला रहे हैं कि क्या हमने आपका विजर आपसे दूर नहीं कर दिया। कौन सा बोझ? अल्लजी अनकदा ज़हरक, वो बोझ जिसने आपकी कमर को, आपकी पीठ को बोझल कर दिया था। यहाँ नया लफ्ज है अनकजा। अनकजा किसको कहते हैं? जब ऊंट की पुश्त पर ज्यादा बोझ लादा जाए तो उसकी पसलियों से एक किस्म की कड़कड़ की आवाज आती है, इसको अनकस कहते हैं। नक्स, नक्ज़े वादा, नक्ज़े अहद, पीछे आप ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, आपकी कमर को बोझल कर दिया था। तीसरा एहसान, व रफाना लक ज़िक्रक, और हमने बुलंद कर दिया आपकी खातिर आपके जिक्र को। या फिर वही बात है जो पहली आयत में थी, वरफाना जिक्रक की बजाय वरफाना लक जिक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये सब कुछ जो हुआ ये आपके लिए हुआ, आपकी अहमियत है इसमें, आपकी शान बयान की गई। आज जो लोग दीवाना कहते हैं कल वो आपको अपना कहेंगे, कल आपको बहुत अक्लमंद कहेंगे, आज जिन आंखों में बेगानगियत आ गई कल वहाँ अपनाइयत ज़रूर आप देखेंगे, और ज़ुबानें जो आज आपके खिलाफ बातें गलती हैं कल आपकी तारीफ के गुन गाएंगी, क्योंकि वरफा नलक का जिक्र करें। क्या जब हालात इतने तंग हो जाएं, जब अपने बेगाने हो जाएं, जब बात सुन के मानने को दिल चाहे लेकिन मुआशरा मानने ना दें, जब जिंदगी की गाड़ी का रुख आखरत की तरफ मुड़े और लोग पलट पलट कर हमें दुनिया की तरफ फेरने लगे, तो क्या कीजिए? इस वादे का इंतजार कीजिए कि फाइन नमाल उसरी युसरा, पस बेशक यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। बात नहीं है, ये नहीं कहा फाइन बादल उसरी युसरा, माल उसरी युसरा, क्योंकि दीन के रास्ते में जो मुश्किल आती है ना उसके साथ ही साथ आसानियाँ आ रही होती हैं। लोग कहते हैं बाद में अच्छे दिन आएंगे, सच्चे मोमिन को मुश्किलात में ज्यादा आसानी मिलती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कौल याद कीजिए कि जो आग में गुजरे हुए दिनों के बारे में फरमाते हैं कि सारी जिंदगी में जो सुख चैन के दिन देखे वो आग के दिन देखे, क्योंकि जो मुश्किलात अल्लाह के रास्ते में आती हैं उसमें इतना सुकून, इतना युसर, इतनी आसानी मिलती है कि उस रास्ते की सौगतें कुछ लगती नहीं, फिर मुश्किलात मुश्किलात नहीं लगती। बात में नहीं, साथ साथ बज़ाहर वो इंसान मुश्किलात में है, बज़ाहर वो इंसान कोशिशों में है, बज़ाहर वो इंसान बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर अटका हुआ है, लेकिन उसके दिल की हालत क्या है? युसर। आप कह सकते हैं कि उसर बज़ाहर दिखता है और युसर दिल में होता है। और इन्ना माल उसरी युसरा, और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यकीन रखो कि हर मुश्किल के बाद आसानी आएगी, साथ भी है और साथ है तो बाद में भी है। हसन बसरी रहमहुल्ला एक ताबई थे, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस आयत में एक बशारत सुना दी, खुशखबरी सुना दी, और फरमाया क्या? लैन यखलि व उसरुन युसरैन, ایک عسر دو یسروں پر کبھی غالب نہیں آئے گا، یعنی ایک دفعہ ایک انسان پہ مشکل آ سکتی ہے، جم جائے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم گیا اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، ساتھ ہی پھر مشکل آ جائے گی دوسری مشکل. اس دوسری مشکل میں وہ بندہ جم گیا تو تیسری مشکل اس کی زندگی میں نہیں آئے گی، اور قسم کھا کے اس کا یقین دلایا جا سکے تو دلا لے کوئی. شرط کیا ہے؟ کہ جب عسر کے دن ہو تو رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا، پھر اللہ پہ راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اللہ کے کیے ہوئے سارے معاملات کو بندہ دل کی خوشی سے مان جائے، پھر اللہ تیسری مشکل نہیں لاتا. ایک تکلیف، ایک چوٹ، دوسری چوٹ، تیسری نہیں آتی. ہاں تیسری کب آئے گی؟ جب پہلی اور دوسری چوٹ میں بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہ ہو. گلے، شکوے، ناراض کیا، سارے غم میرے لیے، سارے دکھ میرے لیے. مثال، کسی عورت کا ایک بچہ مر جاتا ہے، بہت بڑا عسر ہے اس کے لیے، غم کا پہاڑ ٹوٹا، لیکن وہ کہتی ہے رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، فرشتوں کو کہے گا دیکھو میں نے اس پہ کیا مشکل ڈالی اور یہ میرے پہ خوش ہے. باقی سب خوش ہو گیا، اب دل میں تو آتا ہے خوش ہوئے تو اب تو نعمتیں ہو گئیں. کچھ عرصہ نہیں گزرا، ایک اور بچہ مر گیا. اب یہ دوسرا جو عسر آیا نا، اس میں اگر اس نے کہہ دیا کہ رضیت باللہ ربن، تو اللہ اس بندے کو تیسرا عسر نہیں دکھاتا. یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کبھی کسی کو تیسری بار مشکل میں نہیں ڈالتا. انما العسر یسرا، کریں کیا، اتنی مخالفتیں، اتنی باتیں، اتنی لوگوں کی آنکھوں میں وحشت ہے آپ کے اس دین سے، کریں کیا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول محنت میں لگ جائیں، جیسے پہلے غار حرا میں جا جا کے عبادت کرتے تھے اب بھی کیجیے، کیونکہ مومن کی زندگی میں کوئی چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. جب اس قرآن کا سلسلہ پورا ہو تو حدیث میں لگ جائیں، اسی قرآن کی دہرائی میں لگ جائیں، اسی کی باتوں کو جذب کرنے کے لیے کچھ ایسی کتابیں پڑھ لیں کہ جس سے یہ سیکھا ہوا اور سامنے آ جائے. فراغت تو ایک ہی ہے اور وہ موت ہے. مومن کے لیے فراغت قبر میں ہوگی، یا اس کے لیے میدان محشر میں فراغت ہوگی، یا پھر جنت میں ہوگی. اس دنیا میں چلتے چلتے فراغت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور کیا کریں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، رغبت کیجیے. یہ نہ ہو کہ بے رغبتی دکھانے لگ جائیں، سلسلہ تمام ہوا تم روٹھے ہم چھوٹے، یہ کیفیت نہ ہو جائے. بلکہ اب فراغت ہونے کے بعد تھوڑی سی مشکل جو گزر گئی، جو سٹریس آ گیا، اس کے بعد اب آپ رب کی طرف مزید رجوع کریں. پہلے تو اللہ کا کلام روز دل کے تار اللہ سے جوڑ دیتا تھا، چند دن کی چھٹیاں جو بیچ میں آئیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کو جگہ بنانے کا موقع مل جائے. اس لیے اب خود محنت کریں. بہت مہینوں سے نفلی عبادات کم تھی، اب زیادہ کیجیے. بہت مہینوں سے ذکر اذکار پہ توجہ نہیں تھی کیونکہ ترجمے یاد کرنے تھے، اب رغبت کیجیے، اب اور پڑھیے. بہت دنوں سے آپ نے اپنے معاملات کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ عمل کس طرح سے ہو پاتا ہے، کیونکہ ذہن پہ بوجھ بہت تھا پڑھنے کا. تو کوئی بات نہیں، کچھ دن کا سٹریچ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ اپنے رب کی طرف رغبت کریں. اگر آپ دیکھیں تو یہ صورت نہیں ہے، ایک بہت خوبصورت پیکیج ہے. کبھی آپ نے ٹریول ایجنٹ سے کوئی پیکیج لیا ہو، عمرے کا پیکیج، حج کا پیکیج، کئی قسم کی معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک فلی طور پہ وہ لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ یہ کرنا ہے، ایسے ہوگا، اس دن آپ وہاں جائیں گے، اس دن ایسا ہوگا، یہ بس آئے گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صورت جو ہے، یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے ایک پیکیج تھا. ابتدائی دور کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ہم سب اس کے اندر یہی مضمون دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات بدلتے ہیں. جب زندگی میں اللہ کا کلام آتا ہے نا، حالات ضرور بدلتے ہیں. ہم لوگوں کے کلام میں جینے کے عادی ہوتے ہیں. جب اللہ کا کلام زندگی میں آتا ہے، پہلے تو اندر الٹ پلٹ شروع ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا اتھل پتھل شروع ہو جاتی ہے، وہ دل کی مٹی گلتی ہے، نرم ہوتی ہے. اللہ میں کہاں تھی؟ شکر ہے مرنے کی، ابھی زندہ ہوں، یہ کیا چیز میری زندگی میں نہیں آ گئی؟ बिल्कुल नया नया कुरान नई नई बारिश की तरह होता है। हम तो इस सूरत को पढ़ रहे हैं कुरान के सफर के अख्ताम पे, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लम की नबूवत के आगाज की सूरत है। मैं इसको पढ़ाते हुए बिल्कुल ये नहीं सोच रही कि आप आखिरी दिनों में हैं। मैं इसको ले रही हूँ जहाँ ये नाजिल हुआ था। उस वक्त क्या दिल पे गुजरती थी अल्लाह के नबी सल्लम की, और वो हालात सामने आ गए, सीरत के बाब खुल गए। जब तक जहाँ चीज़ नाजिल हो रही है वहाँ के माहौल को नहीं समझेंगे तो बात क्या बनेगी। तो इस वक्त भी वाकई मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे जहन ने सीरत का पढ़ाया हुआ वो बाब आ रहा है कि नबी सल्लम का बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, कितना लोग आपको पसंद करते थे। सादिक और अमीन, वो यंग बच्चा जो बकरियां चराता है, वो बच्चा जो जाके औरतों के घर की सफाई कराता है, वो बच्चा जिसने कभी लगवो लाहब और कोई गाने रक्सो सुरूद की महफिल अटेंड नहीं की, उस बच्चे के ऊपर एकदम इतना भारी कलाम पड़ता है। और गारे हिरा में बैठा हुआ एक शख्स जिसके पास एक फरिश्ता आके उसको पैगाम देता है, चले वो तो आगे आएगी तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, अपने बेगाने बने। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं दीन के लिए, जान लगा लेते हैं, माल लगा लेते हैं, हम जेवर दे देते हैं, हम घर दे देते हैं, लेकिन हम अपनों की नज़रों में बेगानगी नहीं देख सकते। जब हमसे अपने छूटने लगते हैं ना दीन के लिए, अपनों में हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे प्यारे, जिनके साथ हमारी सुबह होती थी, जिनके साथ हमारी शामें होती थी, तो हमें एकदम फीलिंग आती है कि हम तन्हा रह गए, हम अकेले रह जाएंगे। नहीं 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 बच्चों के रिश्ते कैसे हो गए, नहीं ख़ानदान से कट जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये जो मुश्किलात होती है ना, इस सूरत में इसका इलाज है। क्या फिक्र है, अलम नशरफ लक सदरक, लफ्ज़ अलम क्या बता रहा है कि दिल मगमूम था, दिल दुखी था, बोझ था कि अल्लाह ये हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि हकीकत में बाज़ बार यकीन भी नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं मुझको, ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो कभी ऐसी चीज़ नहीं की। तो अल्लाह कह रहे हैं क्या फिक्र करते हैं, अलम क्या नहीं, इसे पीछे जुमला छुपा हुआ ना कोई जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन मौजूद है कि भाई आपको अल्लाह के वादों पे यकीन क्यों नहीं। अलम नशरख लक सदरक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया, क्या हमने आपके दिल में इतनी वसत नहीं पैदा कर दी कि इस कलाम को अपने दिल में ले लीजिए। अब देखिए कि ये जो नशरख का लफ्ज़ है ना, पीछे हमने कई बार पढ़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो दुआ भी मांगी थी कि रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। फिर इसी तरह हमने पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल्इस्लाम, क्या भला वो नहीं जिस शख्स के लिए अल्लाह इरादा कर दे खैर का, नेकी का, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। तो शरह सदर क्या होता है, इसकी अब मैं आपको मुख्तलिफ कोटेशन नोट करवाऊंगी। शरह क्या होती है, और शरह का लफ्ज़ मैंने बोला तो आप एक लफ्ज़ मेरे मुँह से कई बार सुन चुके होंगे कि बुखारी की शरह में ये लिखा है या तफसीर इब्ने कसीर है, लेकिन उसकी शरह, तो शरह क्या होती है, बुखारी किसी ने लिख दी, इमाम बुखारी ने सारी हदीसें पाइल अप कर दी। अब आज तक वहाँ क्या हो रहा है, उस हदीस की वजाहत, उसमें ये चैप्टर इधर क्यों है, वो इधर क्यों है, ये टॉपिक आगे, ये पीछे क्यों, इस पे जो किताबें लिखी गई हैं उसको शुरूहात कहते हैं। यानी बुखारी तो थी, अब बुखारी को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए शरह। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कुरान तो नाजिल हो गया था ना, तो आज जो तफसीर हमारे पास मौजूद है अरबी की, उर्दू की, इंग्लिश की, फारसी की, तो वो तफसीरात क्या हैं, तशरीहात, इसी से लफ्ज़ तशरीह भी है जो हमारे यहाँ बहुत मारूफ है उर्दू में। तो कुशादगी और फराही का मानी आता है इसमें, तो क्या वह कुशादा कर दिया, फराख कर दिया आपका सीना। इसी तरह उलझी हुई और मुश्किल बात की वजाहत को शरह कहते हैं। एक और मफहूम है शरह का, दिली मुसरत और कल्बी खुशी, दिल में जो खुशी आती है ना वो शरह सदर होती है। शरह सदर क्या है नबी सल्लम के लिए, कि अल्लाह ताला ने आपके सीने को इस तरह से धोया, इस तरह से खोल दिया कि जब फरिश्ता जो मलकूती मखलूक है अल्लाह का पैगाम लेकर आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जज्ब करने के लिए तैयार थे। मैं और आप फरिश्ते को नहीं देख सकते, मक्का वालों ने कितने मुतालबे किए, हत्ता कि आठवें पारे की शुरू में अल्लाह ताला ने कहा कि वलवन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइका, ये बहुत दावे करते हैं कि हम पे फरिश्ते उतरे, اگر فرشتے نظر بھی آ گئے تو اس وقت پھر انہوں نے یقین نہیں کرنا، تو فرشتے کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے نبی تو دیکھ سکتے تھے، اس کی وجہ شرح صدر تھی. اور روایات سے، سیرت سے یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں آپ کے سینے کو کھولا گیا تھا. شرح صدر جس کو کہتے ہیں، دو بار ہوا. ایک تو آپ جب 6-7 سال کے بچے تھے، باہر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک دم جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، اور اس میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس کو نکال کے زمزم سے اس کو دھویا. بچے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے جا کے شور مچا دیا، قتل محمد، قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں حلیمہ سعدیہ جب گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، پھر کہتی ہیں کہ میرے دل میں خوف پیدا ہوا. اس بچے کی انیوژل چیزیں، غیر معمولی چیزیں تو وہ بچپن سے دیکھ رہی تھیں. کہنے لگے، اب مجھے لگا اس بچے کی جان کو خطرہ ہے، اور جا کے واپس پھر وہ دے آئی تھی آپ کے گھر والوں کو. 6 سال کی عمر سے پہلے کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی زندگی میں، تو آپ کے سینے کو کھولا گیا، تبھی تو پھر آپ نے اتنی وسعتوں کو پا لیا. دوسرا شرح صدر ہوا تھا معراج سے پہلے، اس سے ایک رات پہلے فرشتے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں حکمت بھری. آج بھی قرآن پڑھنے کے بعد یہی کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا تو فزیکلی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، سینہ کھلا، پھر اس کو صاف کیا، کلین کیا، جیسے آج دل کی کوئی بلومنگ کرتا ہے یا دل کے اندر کوئی ہوا پاس کی جاتی ہے. اللہ کے نبی کا یہ پریکٹیکلی ہوا تھا، جس کا روحانی اثر دکھا. آج بھی دیکھیں ہارٹ پیشنٹس کے دل کو جب کھول کے تھوڑا وہ پمپ کر کے اس کی پائپس کو کھول دیتے ہیں، تو بعض دفعہ پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ لوگ. آپریشن کی نوبت نہیں ہوتی، آپریشن کرنے سے پہلے وہ اس طرح سے پاس کرتے ہیں. تو اللہ کا کلام جب دل میں آتا ہے نا، تو بالکل وہی کام ہوتا ہے جو دل کے آپریشن کے بعد جسمانی طور پہ ہوتا ہے. پھر انسان کے لیے مشکل نہیں رہتی، وہ سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استفادہ اور افادہ دونوں صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، یعنی آپ دوسروں کو فائدہ دینے کے اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کلام کو لینے کے قابل ہو گئے. اسی طرح اس شرح صدر کی وجہ سے آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق کے ساتھ آپ کا براہ راست رابطہ تھا. دیکھیں، ہم سب انسانوں میں رہتے ہیں نا، ہم انسانوں کی باتیں سنتے ہیں، لیکن نبی کے پاس وحی جب آتی ہے تو نبی کے دل میں پھر وسعت ہوگی، تبھی تو اس کی بات سنے گا نا. یہ ایسی ہے کہ جیسے اس وقت میں عام آواز سے بات کر رہی ہوں تو آپ سب سن رہے ہیں، لیکن اگر ایک دم مائک بہت تیز ہو، چرچرائے، یا میں ہی چیخنے لگوں، تو آپ ایک خاص حد سے زیادہ میری بات نہیں سن سکیں گے. تو فرشتے کا بولنا، فرشتے کی بات انسانی پہنچ سے بہت اوپر کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا، آپ کے سینے کو اتنا وسیع کیا کہ ہر قسم کا علم، ہر قسم کی وہ چیز جو آپ کی نبوت کے کاموں کے لیے ضروری تھی اور فرائض رسالت کو نبھانے کے لیے جو چیز آپ کو حوصلہ دیتی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی. اور حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، جتنی مشکلات آپ کے اوپر آئیں دین کے نام پہ، جتنے قاتلانہ حملے آپ کے اوپر ہوئے کسی اور پہ نہیں ہوئے، لیکن خندہ پیشانی سے، بلند حوصلے سے، اولوالعزمی سے آپ نے ان فرائض کو کیسے نبھایا، یہ اللہ کی طرف سے شرح صدر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ جس بندے سے بھی اللہ نے اپنا کوئی کام کرانا ہے، مشکلات میں کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا. اس کو بظاہر ہم شاید نہ سمجھ پاتے، لیکن ان آخری 2 مہینوں نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا. آپ میں سے کئی لوگوں کے فیڈ بیک میرے تک پہنچتا ہے کہ 20 پارے پڑھنے تک اس طرح نہیں محسوس ہوتا تھا جو آخری 2-2.5 مہینے میں آخری پاروں میں ہوا، اور اس کی بہت بڑی وجہ آپ کا لغت پروجیکٹ تھا. حکمت سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کی. میں تو اب خوف کھا رہی ہوں کہ اگر اگلے کسی کورس کے آخری پاروں میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہ ہوا تو ان کے دل کیسے کھلیں گے. آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ جگہ تو اللہ نے دینی تھی، وہ تو دے دے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو ایمان ملا، حوصلہ ملا، سٹرگل ملی. شرح صدر ہوتا ہی ہے کہ دین کے راستوں میں جس کو کوئی کام مشکل لگے اس بندے کو مشکل نہ لگے. آپ کہیں گے شاید یہ میرا خیال ہے اور میں کمنٹ دے رہی ہوں آپ کو آپ کے اس پروجیکٹ پہ. نہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ کیا چیز ہوتی ہے جو بندے کے دل کو کھولتی ہے. اور اگر ابھی بھی مشکل لگتا ہے نا کوئی نیکی کا کام، تو سمجھے کہ سینہ گھٹا ہوا. کوئی कुछ लोग बड़े बड़े रिस्क नहीं ले पाते, वो कहते हैं नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स बियॉन्ड द लिमिट्स। फिर समझ लें कि बियॉन्ड द लिमिट कुछ नहीं होता। हमारे लिए आज भी मुश्किल है, हमारे लिए 5 साल बाद भी मुश्किल था, हमारे लिए हो सकता सारी ज़िंदगी नामुमकिन रहता अगर अल्लाह ताला ये काम ना करवाता। अल्लाह की ज़ात जो है बंदे को किस तरीके से शरह सदर देते हैं, मैं आपको एक कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ। शरह सदर क्या है कि इंसान किसी ऐसे काम को करने और उस काम के मुमकिन होने को यकीनी समझ ले जो कि आम तौर पे मुमकिन ना हो, और इसके लिए एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर भी खुशी से बर्दाश्त करे। ये है शरह सदर। अपने आप को पूछिए हमारा क्या हाल है। हर किस्म के ज़हनी हलचल और तरद्दुद से पाक होकर इस बात पर पूरी तरह मुतमईन हो जाना कि इस्लाम का रास्ता ही बरहक है और वही जो चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए रखी वही हमारे लिए दुरुस्त है, ये होता है शरह सदर। हम सब खुद को पूछें, हम तो पहले पारे पे जब थे तो हम सोच रहे थे 30 नहीं होंगे, मुझे तो यही लगता था ये नहीं होंगे, कैसे हो सकता है, पता नहीं अभी बीच में कितने मरहले हैं, किस लम्हे रुक जाएँ, क्या हो, किसने कोशिशें करवाई हम सब से और किसने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह की ज़ात। शरह सदर हुआ, अल्लाह ने मंजिल करीब कर दी, और इसी हौसले पे अगले कई साल की प्लानिंग आप आज ही कर सकते हैं। असल हौसला लेना, मैं शरह सदर को सोचती हूँ तो मेरे जहन में एक शख्स आता है, कोई बहुत पानी है नाला कह लें जिसको क्रॉस करना है किसी ने, और एक बंदा है वो खड़ा हुआ हिचकिचा रहा है, जाऊं कि ना, जंप करूं कि ना करूं, आगे जाऊं, नहीं नहीं मैं गिर जाऊंगी, नहीं नहीं मेरा पाँव अटक जाएगा, नहीं मैं डूब ना जाऊं, लेकिन एकदम बंदा कहता है जो होना है फिर होगा, एकदम अल्लाह अकबर करके कूद गए और आप दूसरी तरफ होते हैं नाले के, इतना पार्ट बीच में था, आपने कवर कर लिया, पानी भी था कीचड़ भी था, लेकिन आप पहुंच ही गए उधर। मुझे शरह सदर ये लगता है कि दीन के बड़े बड़े तकाजों को निभाना आसान हो जाता है। आई कैन डू इट, हो जाएगा, करवा देगा अल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है, और हकीकत में ऐसे चंद लोग बाकी सबसे भी काम करा लेते हैं। मिसाल देती हूँ आपको सिर्फ बात वादे करने के लिए कि 11:05 हुए हैं, अगर मैं एक आपको गोल दूँ क्या 11:15 यानी सिर्फ 10 मिनट में ये सारे डेस्क, ये सारी कुर्सियाँ, ये सारे टेबल जहाँ से उठा के ऊपर वाले फ्लोर में जा सकते हैं और ये सारे कारपेट भी रैप होके जा सकते हैं, हौसला कम हुआ ना, और ये सारे पर्दे भी उतार के ऊपर वाली जगह पे जा सकते हैं, पहली पे आप ज्यादा बोले थे, दूसरे में कम हुए, तीसरे में चुप कर गए, और अगर कोई बंदा कह दे ना कि इंशाल्लाह तो उसका शरह सदर हुआ है। कभी जिंदगी में दीन के कोई फैसले करते वक्त बहुत ना सोचें, तौफीक मांगे कि अल्लाह सीना खोल दे, कोई बात नहीं, यानी आप सोचिए कि हर वक्त हम खामोश खुद कलामियाँ करते रहते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा काम हो गया, अब काम करने के लिए लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आगे, क्यों कि हम क्या सोचते हैं कि हम ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम ज़रूरत नहीं है। अगर हकीकत में इस वक्त इस जगह पहुँच कर कुरान की इतनी आयतें पढ़कर अगर आप अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कोई डिसाइसिव बनकर कोई फैसला करने के काबिल नहीं हुए तो दुआ पढ़े रब इशरह ली सदरी। अब आपको बड़े इरादे करने हैं, बड़े प्लान्स, बिग अचीवमेंट्स, एराइजन बहुत हाई होगा, कि फिर कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा जी, अब तो सब कुछ ही हो जाएगा, और अगर बिलफर्ज कोई कहे कि अच्छा रमज़ान के बाद जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर एक एडवांस कोर्स भी है और इसका सेकंड स्टेप है तो क्या ख्याल है, तो कहेंगे नहीं वो तो हमने जॉब करनी है, वो तो जी मैंने तो लैंग्वेज सीखनी थी, वो जी मैंने तो अभी अपना घर से रेनोवेट करना है और मैंने तो शादी करनी है, मैंने तो अब 4 महीने पाकिस्तान रहने जाना है। खुद से पूछे, खुद से पूछे क्या मुश्किल लगता है, जितना खुद को अभी बांधेंगे ना आपके लिए उतना आसान होगा। तो हर बंदा अपने हाल को खुद जानता है, फरमाया कि अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया, और जिसका सीना अल्लाह खोल दे उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। पूरी आयतें सारी पीछे कुरान में अगर आप इस मफहूम की सुन लें तो आपको आज फिर शरह सदर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला نیکیاں کرنے والے کو پہاڑ سے نیچے گرنے والے شخص کی طرح بتاتے ہیں، ہر نیکی آسان ہے، اور اپوزٹ وے پہ جو شخص ہے اس کا دل کے ضیق صدر، پڑھا ہے نا ہم نے، اس کے اپوزٹ ضیق صدر ہوتا ہے، تو اس کو ایسے مشکل لگتا ہے ہر حکم کہ جیسے پہاڑ پہ جانا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مجھے دین کے کام پہاڑ پہ چڑھنے جیسے لگتے ہیں یا پہاڑ سے آرام سے اتر کے پھسلنا لگتا ہے؟ دونوں کا فرق آپ کے شرح صدر کے ساتھ ہے. ہارٹ پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکتا، یا کھانا کھا کے نہیں واک کر سکتا، یا تیز نہیں چل سکتا. اسی طرح یاد رکھیے کہ دل کے مریض جن کے شرح صدر نہیں ہوئے، جن کی دل کی پائپیں بند ہیں، جن کے اندر خود دنیا کی محبت کا کولیسٹرول ہے، سستی ہے، درماندگی ہے، وہ کبھی بھی تیز نہیں جا سکتے. جتنا کھانا کھاتے ہیں اتنا چلنا مشکل ہوتا ہے نا، اسی طرح جتنی دنیا ہمارے ارد گرد آ جاتی ہے نا ہمارے اندر، اتنا ہمارے لیے دین کی طرف جانا مشکل ہے. قربانیاں کرنا ہمیشہ غریبوں کو آسان لگا، ہے ہی کچھ نہیں کہتے ہیں، دامن جھاڑ کے دکھا دیں گے، اللہ ہے ہی کچھ نہیں چلتے. لیکن جن کے پاس لمبی لمبی لسٹیں ہوں گی ان کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہے. اصل بات یہی ہے نا، تو شرح صدر کے لیے دنیا ہلکی کرنی پڑتی ہے. تمنائیں، آرزوئیں، اپنی اویلیبلٹی، ہر جگہ، ہر محفل، ہر جگہ میں پہنچوں، نہیں سوری آئی کینٹ، میرا دماغ اتنا نہیں ہے کہ میں رات کو شادی میں جا کے 3 بجے تک جاگوں، وہاں پھر گھر آ کے گھنٹہ بیٹھ کے ان کی غیبتیں کروں، اور فجر سے پہلے سوؤں اور صبح قرآن پڑھنے آ جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. الم نشرح لک صدرک.